ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അധ്യായ 8 ഓർ അധ്യായ കാ നാമ ഹേ നാരായൺ കവച് തോടാ കുഛ കോയി ചീസ് ജ്യാദാ ഹേ പ്ലെയിൻ ജസാ നഹീ ഹൈ നാ തോടാ ആവാജ് ഗൂൻജ്തേ ഹുഏ ആ രഹി നാ തോടാ സാ കം കർ ദോ ഹേ ഹം കർ സകതേ ഓർ സ്കന്ധ 6 ഓർ ശ്ലോക നമ്പർ 20 ഹേ हम लोग इसका उच्चारण करेंगे। माम केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविंद आसंगम आतवेनुः नारायणः प्राह उदात शक्ते മധ്യനിന്ദിനെ വിഷ്ണുര അരി ഇന്ദ്രപാണി മാം കേശവോ ഗദയാ പ്രാതരഭ്യാത് ഗോവിന്ദ ആശഗവം ആത്വേനുഹ നാരായണഃ പ്രാഹ ഉദ്വാത ശക്തേ മധ്യനിന്ദിനേ വിഷ്ണുര അരി ഇന്ദ്രപാണിഹി മധ്യനിന്ദിനേ മാം मुझको केशव भगवान केशव गदया अपनी गदा से प्रातः प्रातः काल अव्यात रक्षा करें गोविंद भगवान गोविंद आसंगवम दिन के चढ़े अत्वेणुहु अपनी बांसुरी लेकर नारायण चतुर्भुज भगवान नारायण प्राहव दोपहर के पूर्व उदात शक्ति ही विभिन्न प्रकार की शक्तियों को वश में रखने वाले मध्यम दिने दोपहर को विष्णु हूं भगवान विष्णु अरिंद्र पाणी ही शत्रुओं को मारने के लिए हाथ में चक्र धारण किए। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद महाराज की। आप लोग अनुवाद साथ साथ दोहराएंगे पीछे से। भगवान केशव दिन के पहले भाग में प्रातः अपनी गदा से तथा दिन के दूसरे भाग में अपनी बांसुरी से मेरी रक्षा करें। सर्व शक्तियों से संपन्न भगवान नारायण दिन के तीसरे भाग में और शत्रुओं का वध करने के लिए हाथ में चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु दिन के चौथे भाग में मेरी रक्षा करें। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, वैदिक ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार दिन तथा रात को 12-12 घंटों में विभाजित न करके 30 घटिकाओं यानी कि प्रत्येक 24 मिनट की में विभाजित किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक दिन तथा रात 6 समान भागों में बटी होती है, जिनमें से प्रत्येक भाग 5 घटिका का होता है। दिन तथा रात के इन विभिन्न विभागों में से प्रत्येक में भगवान को भिन्न भिन्न नामों से रक्षा के लिए संबोधित किया जा सकता है। मथुरा नामक पवित्र स्थान के स्वामी भगवान केशव दिन के प्रथम भाग के तथा वृंदावन के अधीक्षक गोविंद दिन के दूसरे भाग के स्वामी हैं। तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। नारायण कवच का श्रवण कर रहे हैं। हमें भी, हम सब लोगों को भी बहुत आवश्यकता है कवच की, है कि नहीं? जो भी इस मृत्यु संसार में, भयावने संसार में आ गया है, उसको भी कवच की बहुत आवश्यकता है। तो बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इंद्र जो है राजसभा में बैठे थे एक बार अपनी पत्नी सची देवी के साथ में और अपने सेवकों के साथ में, और नृत्य देख रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। तो उसी वक्त उनके जो गुरुदेव हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी वहां पर प्रवेश किए, लेकिन इंद्र जी ने क्या किया, उनका सम्मान नहीं किया। तो पद पोजीशन में व्यक्ति कभी कभी बहुत गर्वित हो जाता है, और विशेषकर देवता, देवतागण जो कि भगवान के सीधे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या होते हैं, उनके टच में हैं, वो भी अहंकार उनको भी आ जाता है। और किसके द्वारा दिया हुआ, भगवान के द्वारा दिया हुआ पद से ही वो गर्वित हो जाते हैं कभी कभी। तो पद पोजीशन में जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उससे अपराध हो जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति उम्र में छोटा हो और उसको पद दे दिया हो, लेकिन हो सकता है उससे भी वरिष्ठ वैष्णव जिसके पास पद ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसको छोटा मानना है, है कि नहीं? तो हर एक के पास अपने अपने गुण हैं, और किसकी कितनी भक्ति है तो भगवान जानते हैं। तो वो जो नया जो भक्त हैं, जिनको गुणों के अनुसार उनको पद दिया गया है, तो उससे कभी भी गर्वित नहीं होना चाहिए। चाहे कोई राष्ट्रपति का पद हो, चाहे मंदिर में अध्यक्ष का पद हो, टेम्पल कमांडर का पद हो, किसी भी चीज का पद हो, तो हमें यह जरूर देखना चाहिए कि हमसे पहले से कितने वैष्णव यहां पर आए हुए हैं, कब से हैं वो, क्या क्या सेवाएं हैं उनकी, हमें जरूर जानना चाहिए, ताकि हम उनके प्रति आदर भाव करते हुए, उनसे सलाह लेते हुए, उनका भी मान रखते हुए अगर व्यक्ति करेगा तो हमेशा सफल रहेगा, कभी असफल नहीं रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि गुरुदेव जो है अपने शिष्यों के साथ में प्रकट रहते हैं हमेशा अपनी आज्ञा के लिए। गुरु अगर हमें लगेगा कि प्रभुपाद नहीं है या गुरुदेव नहीं है, वो हमेशा हैं, तो उनके शिष्य के रूप में भी गुरु जो हैं आगे रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है सबका सम्मान करते हुए ये करना चाहिए। तो इससे शिक्षा मिलती है इस प्रसंग से, क्योंकि इंद्र जी ने अपने गुरु के प्रति, और इतने बड़े पोजिशन में राजा को तो तुरंत उठ करके अपनी सीट छोड़ करके गुरु को प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही आज जो कुछ वैभव है सब कुछ, क्योंकि गुरु प्रसन्नम सर्वशास्त्र दानम, गुरु की कृपा से ही जो है स्वर्ग लोक जो है अलौकिक हो रहा था, जो ही क्या किया, अनादर किया, क्या हो गए, शक्ति विहीन, है कि नहीं? और शक्ति विहीन हुए तो असुरों के सैनिकों से ही पराजित हो गए। अभी बड़े बड़े असुर आए भी नहीं थे, उनके सैनिक आक्रमण किया और सारे देवी देवता पराजित हो गए, क्योंकि उनकी शक्ति निस्तेज हो गई थी, है नहीं? तो पराजित हो गए। तो हम भी संसार में पराजित हो जाएंगे अगर हम अनादर करेंगे वैष्णवों का, अपने से बड़ों का। उम्र में भी बड़े होते हैं बहुत बहुत, क्योंकि ये जो भक्ति का मार्ग है ये बड़ा सूक्ष्म है, आंख बंद करके करने वाला मार्ग नहीं है कि क्लास में बैठे और आंख बंद कर दिया, खोलने का मार्ग है कि नहीं? आंखें खोल करके एकदम कान से बढ़िया से सूक्ष्म मार्ग है, थोड़ा सा चूक हुई अपराध हो जाएंगे और हम अपने जो भी हमने भक्ति की शक्ति कमा रखी है वो निस्तेज हो जाती है, केवल अपराधों से, और चीजों से निस्तेज नहीं होती है, केवल अपराध से बस। और किसी कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो संसार में जो नाम के प्रभाव को खत्म कर सकती है, केवल अपराध जो है क्या कर देंगे, जीरो में, माइनस जीरो ले आएंगे फिर से अंडा, फिर से जीरो, फिर वहीं से शुरू करो। अगर वो भी हमने क्षमा मांगी और विनीत बने तब, नहीं तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है सीखने योग्य। तो उनको असुरों ने भी हरा दिया और क्या हुआ, बृहस्पति जी, क्योंकि एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए सम्मान न मिलना ये भी क्या है, मृत्यु के समान है नहीं। और जहां पर सब उनके शिष्य हों, पुरोहित हैं, वो ब्राह्मण का कार्य भी करते हैं, पुरोहित भी, गुरु का दिशा निर्देश सब कुछ कार्य कर रहे हैं, उनका सम्मान ही नहीं हुआ है। और वो राजा सम्मान नहीं कर रहा है, तो राजा को तो सब फॉलो करते हैं, बड़ा व्यक्ति जैसा डायरेक्शन देता है उस ढंग से डायरेक्शन चलता है, तो वो अपमानित होकर के वहां से चले गए। और ज्यों ही चले गए तब स्वर्ग लोग वहां हार गए, पुरोहित बिना हो गया स्वर्ग, गुरु के बिना हो गया। और गुरु के, अगर गुरु का मार्ग निर्देशन नहीं है, आश्रय नहीं है, अगर हम सबका कोई ना किसी ना किसी वैष्णव को अगर हम आश्रय ना लें, तो आश्रय लैया जेई तारे कृष्ण नहीं त्यजी, जो आश्रय लेके भजन करता है कृष्ण उसको कभी छोड़ते नहीं है, कृष्ण सदा उसके साथ रहते हैं। जो आश्रय के बिना भजन करता है कृष्ण उसको तुरंत छोड़ देते हैं। कृष्ण हृदय में होते हुए भी परमात्मा रूप में रहते हैं बस, बाकी और कोई अनुभव नहीं होंगे बस, वो जिएगा खाएगा बस, केवल अनुभव नहीं होंगे, अनुभूति नहीं होंगे जीवन में। तो जब बृहस्पति जी चले गए तो किसको पुरोहित बनाए, क्या करें, इंद्र को अपनी गलती का आभास हो गया, क्योंकि जो उच्च लोग हैं जो ही वो भक्ति करने लगते हैं त्यों ही उनको आभास भी होता है मैंने गलती कर दी है। तो वो जो है क्षमा मांगने के लिए जा रहे थे तो गुरु मिले नहीं, बृहस्पति जी दूर चले गए, मिले ही नहीं, बोले अभी, क्योंकि जब तक दंड नहीं मिलेगा, कभी कभी क्या हो जाता है आदमी इतना प्रमत्त हो जाता है, जब तक प्रकृति भगवान के द्वारा उसको दंड ना मिले तब तक वो सुधरने का नाम नहीं लेता है, गर्वित हो जाता है, व्यक्ति सबको दरकिनार कर देता है, अहंकारे मत्त हैया, मत्त पागल हो जाता है, पागल हाथी की तरह, और अपनी भक्ति को विनष्ट कर देता है। तो इंद्र जो है क्या हुए, फिर ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी ने बोला चिंता मत करो, जितने दिन गुरुदेव नहीं मिलते हैं तुम क्या करो, त्वष्टा एक जो परम ब्राह्मण है, और त्वष्टा की जो पत्नी थी वो असुर कुल से थी लेकिन ये ब्राह्मण थे, तो उनके पुत्र जो है विश्वरूप, तुम उनको क्या कर लो, पुरोहित बना लीजिए। तो उनको पुरोहित उनने बनाया, उन्हें सारे सभी प्रकार से देवताओं ने उनको बताया कि आप भले ही उम्र में हमसे छोटे हैं लेकिन फिर भी आप ब्राह्मण हैं और उच्च वर्ग के हैं, इसीलिए हम आपको, क्योंकि आप ज्ञान में भी वृद्ध हैं इसलिए हम आपको हर दृष्टि से हम लोग स्वीकार करते हैं, आप चिंता ना करें, हम आपको स्वीकार करते हैं। तो क्या किया, विश्वरूप जी ने यज्ञ किया, यज्ञ करके उसमें आहुति डाल रहे हैं, तो लेकिन क्योंकि विश्वरूप अपनी जगह ठीक हैं, क्यों ठीक हैं, विश्वरूप जो है क्योंकि माता का पक्ष असुर कुल था और पिता का कुल वो जो है इनके देव, तो देवताओं के लिए भी जो है क्या कर रहे हैं, वो आहुति डाल रहे हैं और साथ में माता के कुल के लिए भी आहुति डाल रहे हैं, वो तो ठीक ही कर रहे हैं, विश्वरूप के मन में ऐसा कोई खोट नहीं था, वो चोरी चोरी, लेकिन इंद्र को जो है नहीं बताया उनने, तो इंद्र को जब बाद में पता चला तो इंद्र ने क्या कर दिया, विश्वरूप के तीन के तीर सिर जो है काट दिए, ब्राह्मण को हत्या के कारण उनको फिर आगे ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा, उनका शरीर जो है काफी उसमें रक्त बहुत सारा उसमें कष्ट आ गए, तो उन्होंने फिर चार भागों में उसको, पृथ्वी को दिया, पेड़ों को दिया और जल को दिया और स्त्रियों को दिया। तो पृथ्वी को जो पाप दिया चतुर्था, मतलब पूरे पाप का चौथा, चार लोगों में बांट दिया ना 25-25%, तो पृथ्वी को जो दिया वो क्या हो गया, मरुस्थल हो गया, रेगिस्तान जिसको बोलते हैं जहां कोई पेड़ नहीं आते हैं, और दूसरा स्त्रियों को जो दिया तो मासिक धर्म जो स्त्रियों का आता है उनने वो पाप लिया, और वृक्षों को जो वृक्ष जिनमें से वो निकलता है गोंद बोलते हैं जिसको ना, गोंद निकलता है, चीड़ के वृक्ष में से कितनी बहुत सारी वृक्षों, तो वृक्षों ने ये पाप लिया उसमें से निकलता है। चीड़ के वृक्षों में तो लगाए रखते हैं जिससे तारपीन तेल बनता है, उसको लीसा बोलते हैं, लीसा वो चूते रहता है, समझ रहे नहीं। तो ये वृक्षों ने पाप लिया, और जल ने क्या पाप लिया, झाग बुलबुले, तो बुलबुलेदार झाग वाला जल जो है वो जल ने जो है ये पाप लिए चारों प्रकार से, तब जाके इंद्र को वो हुआ। तो कहने का भाव यही है, तो जब असुरों द्वारा हार गए तो विश्व रूप जी ने जो है क्या किया, इनको बताया कि मैं तुमको नारायण कवच का जो है, नारायण कवच से तुम्हारी जो है रक्षा होगी। तो इस प्रकार से नारायण कवच जो है आप लोगों को पढ़ा जा रहा है, और नारायण कवच का मतलब क्या है, भगवान के विभिन्न नाम, उनके चतुर्व्यूहों के नाम, और उनके उत्तरार्ध पूर्वार्ध दिन के दिन में अलग अलग, जैसे आप देखते होंगे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में भी जो है भगवान के अलग अलग नामों के कारण ये 12 महीने जो है फेमस हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे इसमें केशव नाम आया है, तो केशव नाम, केशव का अर्थ क्या है, कौ धन ईश, धन मतलब प्लस, कौ प्लस ईश प्लस वो, केश के कौ ईश केशव, कौ और ईश के जो ईश्वर हैं, कौ मतलब ब्रह्मा और ईश मतलब शिवजी, वो मतलब शरीर, मतलब जिनके शरीर में ब्रह्मा और शिवजी जो है क्या है निवास करते हैं, ऐसे केशव जिनका नाम कृष्ण, केशी असुर का वध करने के कारण भी केशव, और केशव का अर्थ ये भी है जिनके केश जो है कैसे हैं, घुंघराले हैं, एकदम घुंघराले, मोर मुकुट वाले, घुंघराली लट वाले, समझ रहे नहीं, घुंघराले लट। तो अर्जुन का कहने का मतलब है, हे केशव आपके बाल भी, बाल तो टेढ़े हैं लेकिन मुझे भी टेढ़े काम में लगा रहे हो युद्ध के उसमें, ये क्या कर रहे हैं आप, आप अग्रहाण्य, अग्रहाण्य बोलते हैं उस महीने को, दिसंबर के महीने को, और उस महीने को केशव, केशव मास भी बोला जाता है क्योंकि 12 मासों में केशव मास, तो केशव मास में जो है अग्रहाण्य में जो एकादशी आती है उस दिन भगवान ने ज्ञान दिया, एक तरफ तो आप ज्ञान दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप युद्ध करा रहे हैं, केशव मुझे जो है ऐसे विपरीत कार्य में लगा रहे हैं, समझ रहे नहीं। तो केशव, और मथुरा में भी जो है, मथुरा की भी बड़ी महिमा है जैसे यहां पर बता रखा है, भगवान के धाम के तीन डिवीजन है, गोकुल मथुरा और वृंदावन, द्वारिका भी। तो इस प्रकार से मथुरापुरी जो है, सप्तपुरियों में जो है मथुरापुरी जो है सर्वश्रेष्ठ पुरी है, तो वहां पर आदि केशव यानी कि केशव, केशव गौड़ीय मठ भी है वहां पर, आप जाएंगे केशव जी गौड़ीय मठ बहुत पुराने समय से, क्योंकि वहां आदि केशव भगवान केशव के रूप में क्या है वहां पर विराजमान है। तो यहां पर बता रखा है इस प्रकार से हम जो है भगवान के इन नामों का उच्चारण करके अपनी क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, जैसे इंद्र ने अपनी रक्षा करी। तो नामों का, इसीलिए मैं जो आज भजन गाया उसका अर्थ अभी पढ़ेंगे, मैंने कहा बाद में पढ़ते हैं क्योंकि नाम का ही है। तो कलयुग में हमारा जो वास्तविक कवच है वो क्या कवच है हमारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कवच है हमारे लिए, इससे बड़ा कवच और कोई है ही नहीं। सभी मंत्र, ये जितने भी चतुर्व्यूह हैं, और चतुर्व्यूह भी पता है वैकुंठ में जितने लोक हैं उतने चतुर्व्यूह हैं, केवल संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेवी नहीं है, वैकुंठ में जितने लोक हैं उतने ठाकुर जी के नाम, मधुसूदनाय नमः, केशवाय नमः, पद्मनाभाय नमः, ये ना ये, और उन सभी के चहुं दिशाओं में संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, और हर लोक में, ठीक है कि नहीं। इसीलिए जब हम लोग कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसमें भगवान के नामों का हर तरह से सुबह दोपहर शाम, और जैसे कि यहां पर बता रखा घटिका, घटिका का मतलब क्या है, घटिका का मतलब घड़ी, इसको घड़ी बोलते हैं, एक घड़ी आध पुनियाद, तो यहां घटिका तो थोड़ा सा जटिल शब्द लिख रखा है, 30 घटिकाओं प्रत्येक 24 मिनट, मतलब एक घटिका में 24 मिनट होते हैं, ठीक है, 30 से 24 को इंटू कीजिए कितने हुए, 720 मिनट, ठीक है, तो 12 घंटे 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 360 है नहीं, तो कितना हो गया? 720 दिन और रात। इस प्रकार से क्या हो गया है? घड़ी, जैसे एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, पहले घंटा वंटा नहीं बोलते थे, एक मुहूर्त हो गया जी, एक मुहूर्त में कितने? 48 मिनट, यानी कि घंटे से थोड़ा कम। और आधा मुहूर्त में क्या बोलते हैं? आधे मुहूर्त को जो है उसको बोलते हैं घटी, घटी का जिसको घड़ी। तो क्या हो गया? दो घड़ी, यानी कि एक मुहूर्त में कितनी घड़ी हो गई? दो घड़ी हो गई, 24 और 24, 24 दुना 48, ऐसे करके। तो दिन और रात जो है 12-12 घंटों में विभाजित करके, कहने का मतलब है सवेरे से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सवेरे तक, जितने भी प्रातः, पूर्वान, मध्यान्ह, ऐसे उसके बाद रात्रि काल में भगवान अलग अलग नामों से उस वक्त उच्चारण किया जाता है, ठीक है कि नहीं? और इन नामों से हमारी क्या होती है? हर तरह से रक्षा होती है। इसलिए यहां पर बता रखा है क्या कि दोपहर के पूर्व में, दोपहर से पहले शत्रुओं का वध करने के लिए हाथ में चक्र धारण करने वाले कौन? भगवान नारायण मेरी रक्षा करें। और विष्णु जी दिन के चौथे भाग में, यानी कि दोपहर के बाद जो चौथा भाग है उसमें मेरी किससे रक्षा करें? गदा से रक्षा करें। एक में चक्र से रक्षा करें, एक में गदा से। इसीलिए जब चैतन्य शिक्षामृत आप पढ़ते हैं तो उसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि अलग अलग जो भगवान का नाम है उसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म पकड़ने के ढंग भी अलग अलग हैं। कहीं पर पद्म गदा शंख चक्र है, कहीं पर चक्र गदा शंख पद्म है, किसी के इस ढंग से हाथों के हिसाब से उनका नाम जो है अलग अलग बता रखा है। लेकिन जो भी हो, हमारे लिए दसों दिशाएं, केवल चार दिशाएं नहीं, उसके छह जो कोण हैं, छह कोण दिशाओं के और चार दिशाओं, तो दसों दिशाओं में जो है हमारे लिए क्या होता है? ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, सारे जितने चतुर्व्यूह हैं, जितने भी बैकुंठ में अनंत लोक हैं, और जितने उसमें ठाकुर जी हैं उनके जो नाम हैं, और जितनी लीलाएं भगवान करते रहेंगे आगे भी, और उनमें जो उनके नाम पड़ेंगे, और जो भागवत में जितने उनके नाम बता रखे हैं, उस सारे के सारे नाम किसमें समाहित हैं, समावेश किसमें है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए ये भी अगर आप ना कर पाए तो कोई चिंता नहीं है, आप सुबह भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे जपिए, दोपहर में भी यही जपिए, शाम को भी यही जपिए, रात को भी यही जपिए, ठीक है कि नहीं? आपको भूत पिशाच निकट नहीं आवे कहने की भी जरूरत नहीं है, आपको केवल कहने की जरूरत है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही चैतन्य महाप्रभु का मत है, यही जो है सर्वशास्त्र, सारे शास्त्रों का जो सार है, सर्वशास्त्र सार क्या है? वो है भगवान का पवित्र नाम बता रखा है। इसी को बोलते हैं नाम बिनो कली कालेर नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सर्व मंत्र सार, जितने मंत्र हो चुके हैं और होंगे, अगर नए भी बनाए जाएं, उन सब का सार जो है क्या है? एसेंस, जूस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये है। और जिसको इस बात पर विश्वास नहीं है, जो इसको ऐसे ही सोच रहा है कि ये तो ऐसे ही बोलते हैं जी, नास्तेव 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 गतिरन्यथा, उस व्यक्ति का उद्धार संभव नहीं है, उद्धार संभव नहीं है, उद्धार संभव नहीं है, न उसको प्रेम मिलना संभव है, न उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलना संभव है, इस संसार में सुख मिलना भी संभव नहीं है, क्योंकि धर्म ही कलयुग का क्या है? बोलो, आप बोलते हैं बड़ा धार्मिक हूं, तो अगर आप धार्मिक हो तो क्या करोगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करेंगे तो धार्मिक हैं, नहीं तो आप ऐसे ही हैं। फिर लोचन बोले सही पापी एलो आर गेलो, आया और गया ऐसा पापी, जो महामंत्र जप नहीं कर रहा है वो निसंदेह पाप करेगा, चाहे वो कितना ही लंबा टीका लगा ले, चाहे इतनी बड़ी शिखा रख ले,
सीधी सी बात है, जो नाम नहीं जप रहा है वो कलयुग में वो भक्त नहीं है। ये बहुत ऊंची बात बता रहा हूं मैं, उसको कैसे भक्त माने, जो भगवान कहते हैं उस बात को तो महत्व ही नहीं दे रहा है वो, उसके लिए पता नहीं किस किस बात का महत्व है। और यहां पर देखिए क्या बता रहा, अहो बत स्वपचो अदो गरियान यज्ञ हिवाग्रे वर्तत नाम तुभ्यम ते पुस्त पस्ते जुहू शश्नुर आर्या ब्रह्मानुर चुनिम ग्रणंती ये ते। यदि चंडाल कुल में भी उत्पन्न व्यक्ति भी कृष्ण नाम का कीर्तन करता है, चंडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति, तो समझना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में सभी तरह की तपस्याएं कर ली होंगी और सारे वैदिक यज्ञ संपन्न कर लिए होंगे। तो ये साधारण लोग यहां पर नहीं बैठे हो आप लोग, आप लोग वास्तव में पिछले जन्मों में सब तपस्याएं, सारे वैदिक कर्मकांड, ये तीर्थ स्नान वो स्नान, ये कर्मकांड वो कर्मकांड, ये हवन ये वो, पता नहीं क्या क्या सब कर चुके हो। इसीलिए सुमेधसः यज्ञ संकीर्तन प्राय है यजंती ही सुमेधसः, जो अत्यंत बुद्धिमान है वो लोग इस हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ेंगे डायरेक्ट ब्रह्म संप्रदाय से। चार संप्रदाय में भी ब्रह्म संप्रदाय सबसे ऊंचा है, क्यों? क्योंकि इसमें चैतन्य महाप्रभु आए, और चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते हैं, और जब आए हैं तो उन्होंने दीनो हीनो जातो छिलो हरिनाम उद्धारी लो, उन्होंने प्रेम दिया, ये प्रेम नाम दिया। ऐसा नहीं कि जीवों को हरिनाम देने के लिए एक गौण मंत्र, एक गौण नहीं, ये एक गौण रीजन नहीं है, हरिनाम से ही तो प्रेम मिलेगा, हरिनाम भी मूल है। राधा रानी का भाव कैसे प्राप्त होगा जब हरिनाम गाओगे? चैतन्य महाप्रभु ने पूरी जिंदगी भर एक एक चित्र में चैतन्य महाप्रभु को जप करते हुए दिखाया गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चल रहे हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र, खाईते सुईते निरंतर कृष्ण नाम ले रहे हैं, उनके जिह्वा पर निरंतर कृष्ण नाम जिसके स्फुरित हो सकता है वो है, वो क्या है, परमहंस है वो, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम, वही अमलात्मा है जो मल को टच नहीं कर सकता है, जो निरंतर नाम गाने सदा रुचि, सदा जिसकी नाम गान में, यहां तो सोलह माला में हालत पंचर हो जा रही है कि नहीं, बार बार ऊपर नीचे देखते रहते हैं कितनी हुई कितनी नहीं हुई करके। तो महिमा सुननी चाहिए, मैं इस नारायण कवच के माध्यम से थोड़ा सा हरिनाम की महिमा कह के कह रहा हूं। ऋग्वेदो यजुर्वेदो साम वेदो अप्यश्रवण अधितास्ने येनोक्तम हरित्यम अक्षर द्वयम, मतलब जो व्यक्ति ह तथा री बोलिए, हरि 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 हरि, हो गया, चारों वेद पढ़ लिया आपने, यही अर्थ बता रखा है इस श्लोक का, कि जिसने ह तथा री इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया है, समझ लो उसने चारों वेद, सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्वेद को पढ़ लिया है, केवल पढ़ नहीं लिया उसका फल भी प्राप्त हो जाता है जो केवल ह और री इनका उच्चारण करता है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, समझ रहे नहीं? ये साधारण नहीं है, ये चीजें समझ में आएंगी हमको जब हम धीरे धीरे शुद्धता की ओर बढ़ेंगे। जितना ज्यादा आप शुद्धता की ओर बढ़ोगे ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। इसीलिए जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ता है और फिर उसी चीज को सुनता है ये भागवत के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, तो उसको और आनंद आता है। जो पढ़ता ही नहीं है ठीक है उसको, लेकिन जो उसको फिर पूर्ण विश्वास होता है, शास्त्र में भी लिख रखा है, देखो प्रभु जी लोग भी वही बोल रहे हैं, और फिर वो सवेरे नाम जप करता है सुबह के समय में गंभीरतापूर्वक, क्योंकि उसको पता है सबसे बड़ा काम यही है और कोई काम नहीं है सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा समाधि भी यही है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपते वक्त नो डिस्टर्बेंस, चुपचाप रहो, प्रभुपाद बोलते चुपचाप रहो, सेट प्रॉपरली, प्रभुपाद बीच बीच में बोलते रहते, यज्ञ चल रहा है, सबसे बड़ा कार्य भगवान के खजाने में जो सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा हीरा, वो भगवान ने फ्री में जो है यहां इंपोर्ट करके भेज रखा है, और प्रभुपाद जी ने उसकी ऐसी मार्केटिंग की है कि गली गली कूचे कूचे में मिल रहा है, फ्री में माला लेके भक्त लोग भाग रहे हैं, हरि बोल माला तो ले जाओ, बोले नहीं 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 थोड़ा ले जाओ, चलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बच नहीं सकते हो, ऐसा कलयुग है ये। धन्यो कलयुगम, धन्य कलयुगेरो श्री चैतन्य अवतार। धन्य है ये कलयुग जहां पर हम बच नहीं सकते हैं हरि नाम से। कोई बचेगा नहीं है 10,000 सालों में, कोई नहीं बचेगा। दीनो हीनो जात छिलो, चार प्रकार की जितनी भी जातियां हिंदू मुस्लिम सिख सब हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे। नहीं जपेंगे तो सामने कीर्तन चल रहा होगा इतना तब भी बोलेंगे देखो हरे कृष्णा हरे रामा वाले, ये हरे कृष्णा का भक्त आ गए। तो नहीं बच सकते हो। तो कितना देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे कलयुग में बद्ध जीव के रूप में इस कलयुग में भी आए, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जो हमें कृष्ण प्रेम देने के लिए हरिनाम दे रहे हैं। तो हरिनाम साधारण नहीं है, ये सारे वेद पढ़ लिए उसने। चंडाल भी अगर हरिनाम जपता है तो वो भी क्या है, वो भी तर जाएगा, समझ रहे हैं? और आगे क्या बता रखा है, यहां पर भगवान बांसुरी से मेरी रक्षा करें। बांसुरी की विवाद बताई है। अब बांसुरी से कैसी रक्षा करेंगे गोविंद? चैन की बंसी तो जो है गोविंद ही बजाते हैं एकदम आराम से, एक पैर को ऊपर रख करके। आपने देखा होगा जब हम लोग पहाड़ों में ना ग्वाला जाते थे, ग्वाला जानते ना, ग्वाला भगवान भी ग्वाला है। यहां तो उसको छोटा काम माना जाता है, लेकिन भगवान के लिए छोटा काम हो तो स्वयं यानी कि गोपाल हैं, ग्वाल बालों के ईश हैं। तो भगवान भी ग्वाला जाते हैं, तो जब हम लोग ग्वाला जाते थे तो बांसुरी लेके भी जाते थे। आपको पता है बजानी भले ही ना आए, कितने लोगों को पहाड़ में बड़ी अच्छी अच्छी बांसुरी बजाती आती है। वो लोग क्या करते हैं, पैर को ऐसे सोते हुए ऐसे ऊंचे 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 वो होते ना क्या बोले पहाड़ जैसे, तो अपने आप तकिया की जरूरत नहीं है, पहाड़ है ऐसे हो गया और पैर को ऊपर रखा और बांसुरी बजाना शुरू हो गए मधुर मधुर। तो चैन की बांसुरी कौन बजाता है? भगवान भी ऐसे ग्वाला जाकर के बांसुरी बजाते हैं। तो ऐसे बांसुरी से भी, बांसुरी कोई साधारण थोड़ी है। भक्ति रसामत सिंधु में बंसी के तीन प्रकार बता रखे हैं, वेणु वेणु मुरली और वंशी। वेणु छोटी होती है 6 इंच लंबी कम से कम थोड़ा छोटी होती है और बहुत ही सुंदर बजती है, छोटी उसका साइज होता है। और मुरली जो है बहुत मोहक होती है और उसका कितना 18 इंच लंबी, काफी लंबी होती है वो। उसमें 4 छेद नीचे पूरे शरीर में, ऊपर 1 छेद होता है ऐसे करके, उसको मुरली कहते हैं। और ये कभी कभी संगमरमर से भी बनती हैं, कभी कभी बांस से बनती हैं, है कि नहीं, कभी कभी स्वर्ण या चांदी से निर्मित इस प्रकार से द्रव्य से, इन चीजों से भी बनती हैं। और तीसरा है बंसी। बंसी जो है 15 इंच लंबी होती है और इसमें 9 छेद्र होते हैं, 9 छेद, ठीक है कि नहीं? और भगवान अपनी लीलाओं में तीनों बंसियों का उपयोग बड़ी भली भांति करते हैं अलग अलग समय में। कभी बड़ी वाली बांसुरी लेते हैं, कभी खोसनी हो तो छोटी ले लेते हैं, ठीक है कि नहीं? कभी बांसुरी लीला करनी है तो फिर दूसरे टाइप की यानी कि ले लेंगे। तो इस प्रकार जो है, और इनसे भी लंबी जो है बता रखा महानंदा या सम्मोहिनी जिसको कहा जाता है, जो ऐसा सम्मोहित करती हैं कि तीनों जगत जो हैं पागल हो जाएंगे उस बांसुरी से। और मजे की बात क्या है, तीनों जगत में अगर वो सुनाई देगी तो फिर कोई कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। वो केवल उनके जो सुनना चाहते हैं, विशेषकर गोपियां, ठीक है कि नहीं, उनके निज जन वो उनको ही सुनाई देती है, वो देवताओं को भी नहीं सुनाई देती। तो देवता कामकाज सब ठप हो जाएंगे सब। सम्मोहिनी तो ऐसी है, सम्मोहिनी वो और लंबी होती है, महानंदा ये जो है मणि जड़ित होती है। और आगे क्या बता रखा है, आनंदिनी आकर्षणी, एक आकर्षणी है और एक आनंदिनी बंसी है। तो जो आकर्षणी है वो सोने से निर्मित है और महानंदा सम्मोहिनी किससे, मणियों से। और आनंदिनी किससे है, आनंदिनी को बंसुली भी बोलते हैं। ये ग्वाल बालों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इस आनंदिनी बंसी से भगवान जो हैं अनंत अनंत गाय को, 9 लाख तो उनकी ही है, 9 लाख गाय, बछड़ों की गिनती नहीं है अभी, अभी बैलों की भी गिनती नहीं है, बैल भी होंगे है कि नहीं, केवल 9 लाख गाय और पता नहीं कितनी कितनी और भी जो ग्वाल बाल हैं, अनंत सखा अनंत गाय, उन सबको जो है भगवान को सभी के नाम याद रहते हैं। इतनी गायों को जो है उस आनंदिनी बंसी में क्या करते हैं ठाकुर जी, बुलाते हैं और सभी गाय जो है अपने कान खड़े करके भाग भाग करके जो है आने लगती है। तो ऐसी बांसुरी, ऐसी मुरली, ऐसी बंसी जो है मेरी क्या करें, दोपहर से पहले गोविंद नाम से रक्षा करें। ये है तो नारायण कवच में ये सारे श्लोक आ रहे हैं जिसमें भगवान के सभी नामों का उच्चारण होगा। इसको याद भी कर सकते हैं भक्त लोग, क्या बुरी बात है ना, याद करें तो याद करके इसको गायन श्लोकों के रूप में प्रतिदिन कवच रहेगा आपके, सभी तरह से आपकी रक्षा होती रहेगी, है कि नहीं। कोई भी माई का लाल किसी भी तरीके से, क्योंकि संसार में विभिन्न टाइप के लोग हैं, कोई जादू में, कोई काला जादू में एक्सपर्ट है, ठीक है कि नहीं, कोई बोलने में एक्सपर्ट है, कोई गाने में एक्सपर्ट, कोई धन में है, किसी के पास कुछ चालाकी है, वहां से दबाता है वो, सब दबाने में लगे हुए हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर जब हम सभी लगे शुभ काम में नहीं लगे हुए हैं, जितना इंसान दूसरे को खींचतान में लगे रहता है ना, उसको कैसे मिल गया, उसके पास से कैसे आ गया, उसको बोलो कि तुम अपना अच्छा करके तुम ये बोलोगे मैं कब ऐसा बन पाऊंगा, अपने लिए प्रयास नहीं करता है, उसको नीचे अब इसको कैसे इधर उधर किया जाए, फिर उसकी निंदा की जाए, उसने हाँ ऐसे ही कर लिया होगा, ये है वह सब, ठीक है। जितना समय उसमें बर्बाद करता है, अगर उतना नाम लेने में कर लेता तो कोई कष्ट ही नहीं आता फिर। तो हम सब लोगों का रोग है कि हम सब भगवान के नाम को कम लेते हैं और सांसारिक काम को ज्यादा याद रखते हैं, बस समझ रहे ना, दुनिया भर के फोकट के कामों को याद रख रहे हैं और नाम भूल रहे हैं। इसीलिए सभी प्रकार के अनर्थ हमारे जीवन में विघ्न के रूप में आ रहे हैं, कभी यहां से विघ्न आ रहा है, कभी इधर से, कभी उधर से, अलग अलग लोगों के द्वारा प्रस्तुतिकरण विघ्न में। लेकिन आप भगवान की शरण लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र कवच, इसकी शरण लीजिए, जो ही इसकी शरण लोगे तो सभी प्रकार के अनर्थ क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, हृदय की दुर्बलता दूर हो जाएगी, असतृष्णा सब दूर हो जाएंगी, ये आप अनुभव करेंगे। देखिएगा, आपने कुछ नहीं करना है, लगातार एक महीने मंगल आरती आना, जिसको भी भक्ति में आगे आगे बढ़ने का स्वाद क्या होता है, लगातार एक महीने बिना नागे के मंगल आरती आइए और 9 बजे तक रहिए, बस कुछ नहीं करना है, और सवेरे ही माला कंप्लीट कीजिए अपना, एक महीने लगातार आइए और अनुभव करिए कि आपको क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, अनुभव कर लीजिए, क्योंकि इससे बड़ा भक्ति के कार्य और कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बता रखा है, हर तरह से जो है रक्षा होए। तो जो मैंने भजन गाया था उसका अर्थ इस प्रकार से है, चिन्मय आनंद रूपी अमृत के भंडार स्वरूप हरि नाम की जय हो, जो और कोई नहीं स्वयं पर तत्व भगवान श्री कृष्ण ही अपने भक्तों पर कृपा कर अक्षर के आकार में नाम रूप में अवतरित हुए हैं। देखिए भगवान जो हैं नाम के रूप में, अक्षर के रूप में जो है क्या हुए हैं, कलिकालेर नाम रूपे अवतार, स्वयं कृष्ण नाम के रूप में, जैसे बोलते ना शब्दों में, मैं प्रणव सर्व वेदेशु खे पौरुषम नसु, जो ओम है, ओम अ उ म, उसका 3 डिवीजन किया जाता है, अकारण च्युत मतलब जीव भगवान और उनकी शक्ति सब ओम में समाया हुआ है, केवल ओम बोले, इसीलिए हरि ही ओम, ओम नमो, तो ओम आता है शब्द तो। लेकिन ये ओम भी, ये अ उ म भी जो है इस हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है, पूर्ण रूप से इसका भी समावेश है, इसीलिए अलग से बोलने की भी जरूरत नहीं है। अलग से कोई बोले कि फिर प्रभु जी ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, आज से मैं ओम 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 बोलूंगा, अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन जब महाप्रभु बोल रहे हैं, भगवान की आदेश है, तो फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये विश्वास होना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये अक्षर के रूप में भगवान जो है प्रकट हो गए, आपकी जेब में भगवान है, आपके गले में टंगे हुए भगवान है, और कृष्ण राधा कृष्ण आपके मुख में, अब बताइए फिर कौन सी रक्षा करें, आभास ही नहीं होता है हमें, अनुभव कीजिए। हवाई जहाज क्रैश हो गया है, आग लग गई, छतरियां नहीं हैं, क्या करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अब कैसे बचोगे, ये भगवान का डिपार्टमेंट है, आपका डिपार्टमेंट नहीं है, ये आपका डिपार्टमेंट है ही नहीं, आपका डिपार्टमेंट क्या है, विश्वास से हरे कृष्ण 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 हरे हरे आप जपिए, कोई बात नहीं। अब कैसे नीचे आओगे पता ही नहीं, कहां से छतरी आएगी, कैसे करेंगे वो जाने, बस ये हमारा हेडेक नहीं। लेकिन आप पूर्ण विश्वास से, जैसे बीच में एक दिन भूकंप आया तो क्या हुआ, सब बाहर निकले एकदम, घर में से क्या करें क्या करें। मैंने कहा करना कुछ नहीं, नमस्ते नरसिंहाय, ये याद ही नहीं आता उस वक्त। असली परीक्षा तो यही है ना, क्योंकि विश्वास नहीं है। भूकंप भूकंप बाहर जाओ, मैंने कहा बिल्डिंग गिरेगी मरेगा, बिल्डिंग गिरेगी और मरेगा, क्यों बाहर जाने की जरूरत है, जहां है वहीं बैठे रहे पर। नमस्ते नर्स, हमारे पास चारों तरफ सुरक्षा कवच है, हरे कृष्ण बस। लेकिन नहीं आएगा याद वो, तोता क्या करता है ना, तोता मियां मिट्ठू राम 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 राम, लेकिन जब आता है कौन, बिल्ली आती है तो टाई 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 काय, तो उस वक्त फिर जो है उसको राम राम याद नहीं आता है। तो ये उसी को आएगा जिसको इतना विश्वास है, ये केवल ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है। तो हरि कृष्ण आदि नामों की जय हो जो जगत के जीवों के आश्रय स्वरूप है। हमने आश्रय लेना है किसका, बोलो, नाम का। नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, जो अंतर करता है वो पाखंडी है। कौन है? पाखंडी। और यमराज जी के डंडे से बचेगा नहीं वो, तबियत से डंडा मारेंगे यमराज जी समझ रहे हैं, वो भगवान के चक्र से भी बच नहीं सकता है तो अर्थात जिनका आश्रय ग्रहण करने पर जीव को संसार में जन्म मरण चक्कर से विश्राम प्राप्त हो जाता है। आपको पता है मथुरा में एक घाट भी है, विश्राम घाट, विश्राम घाट, जहां पर चैतन्य महाप्रभु भी आए थे स्वयं, आदि केशव जी का उन्होंने दर्शन किया, विश्राम घाट पर विश्राम किया है, नहीं स्वयं भगवान अपने ही लीला स्थलियों का दर्शन करने आ रहे थे, देखो आनंद से। हमें तो करना ही चाहिए। तो जो समस्त जीवों को आनंद प्रदान करते हैं, मुनि वृंद भी निरंतर इन नामों का आदर पूर्वक पुलकित होकर गान करते हैं, हे कृष्ण नाम आप सर्वशक्तिमान हैं, जीवों का कल्याण करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है, क्योंकि आपकी कृपा के बिना कोई भी इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। यदि कोई एक बार अवहेलना पूर्वक भी, अश्रद्धा पूर्वक भी आपको पुकारता है तो आप उसके समस्त प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति दीनहीन एवं अकिंचन होकर आपको पुकारता है तो फिर आप और किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते। हृदय में आपकी स्फूर्ति होते ही उसके ताप दुख कष्ट सब दूर हो जाते हैं, तथा उसके स्थूल व सूक्ष्म दोनों ही माइक शरीर दूर हो जाते हैं एवं वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, हे हरिनाम आपकी जय हो, मैं सर्वदा आपके श्री चरणों की आस लगाए बैठा रहूंगा। हरिनाम के भी चरण हैं, क्योंकि हरिनाम और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है। अब हरे कृष्ण जपते ही आपको राधिका रमन याद आएंगे, छोटे से युगल कितने प्यारे, देखिए अद्भुत राधिका रमन कितने सुंदर हैं, है कि नहीं, अद्भुत सुंदर हैं, अद्भुत। तो हमें भी जो है हरिनाम की आस हम भी लगाए बैठे, और ये आस तभी होगी जब हम सवेरे उठ करके सीधा माला पकड़ेंगे, वही व्रत है, वही तप है, वही यज्ञ है, वही जप है, वही हवन है, वही व्यायाम है, सब कुछ मेरे लिए हरिनाम है बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आगे जो चिंता करता है ना, सच में वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है बस। सारा जहां आपके, आप करके तो देखिए, समझ रहे हैं, भगवान आपके आगे पीछे डोलेंगे, घूमेंगे, दर्शन देंगे, ये भक्तों का अनुभव है। ठाकुर जी जो है नाचते हैं हृदय में, फिर भक्त नाचता है, ठीक है। तो कृपा करके इस नारायण कवच से हमने यही सीखा। तो केशव नाम का एक और अर्थ भी मुझे याद आया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, केशव का अर्थ बोलते हैं जो श्रीमती राधा रानी के केशों का विन्यास करते हैं, यानी कि राधा रानी के केशों को जो सजाते हैं, जो अन्य अवतार नहीं करता है कोई भी, उनके प्रभाव वैभव जितने भी वो अपने श्वास स्वयं विस्तार करते हैं, कोई भी उनका अवतार ये नहीं करता है। लेकिन जो स्वयं कृष्ण करते हैं, क्या करते हैं, राधा रानी के केशों का जो है विन्यास, फूलों से जो है उनके केशों को जो सजाते हैं, ऐसे केशव। और गोविंद नाम, गोविंद नाम का तो आपको पता ही, गो से गाय। आपको पता है जब ब्रजवासियों की रक्षा की तो गाय, इंद्र जो है डरा हुआ था, आज जो है तबियत से थप्पड़ पड़ने वाले हैं इंद्र इतने डरे हुए थे, तो क्या किया, सलाह मशविरा लिया उन्होंने, बोले गाय को आगे ले जाओ, आगे आगे सुरभि गाय। और सुरभि गाय बड़े, सुरभि गाय का लक्ष्य था कृष्ण के आनंद पूर्वक दर्शन करना। क्यों, ऐसे कृष्ण जिन्होंने अभी अभी ब्रजवासियों की रक्षा की है और उनको हर भक्त को अपना दिव्य रूप दर्शन कराया है इतने दिन लगातार, तो सुरभि गाय तो इस प्रकार से दर्शन करने आ रही है। लेकिन इंद्र जो है गलती करने के कारण, भय के कारण आए हैं, पीछे पीछे दुबुक करके एकदम। भगवान ने गाय को देखा तो सारा गुस्सा जो है दूर, और गाय ने जो है क्या किया, अपने दूध से उनको अभिषिक्त किया, इसलिए वहां पर गोविंद कुंड बन गया, अभिषेक हो गया भगवान का। ठीक है कि नहीं, तो देखिए अंतर है। संसारिक जीव जो है भय से भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि गलतियां करते हैं, इंद्र भी भय से है कि नहीं, आसरा लेके डरता है, वही डरता है। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी आपसे बात करने में डर लगता है, मैंने कहा जरूर कुछ पाप है, तो संत हृदय नवनीत समाना भैया, मिलके तो देखो, बैठ के तो देखो, संत लोग तो गले लगाते हैं, तो डर रहा है निसंदेह जो है, क्या है इसका मतलब, पाप है जीवन में, कुछ ना कुछ उल्टा कर रहा है, कुछ उल्टा सोच रहा है, इसलिए डर रहा है। नहीं तो डर किस बात का बताओ, साधुओं से, भक्तों से, भगवान से मिलने में कोई डर नहीं, तो डर उनसे लगता है, असुरों से डर लगना चाहिए, आसुरिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं। तो इस प्रकार से गोविंद जो हैं, लेकिन गाय जो हैं वो जो हैं प्रेम से दर्शन करने आई थी। तो जो लोग भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं वो भगवान का फिर प्रेम से, भय से नहीं, कर्तव्य से भी ऊपर उठ करके प्रेम, प्रेम से जो है श्रवण करते हैं और प्रेम से दर्शन करते हैं और प्रेम से ही कथा सुनते हैं। तो ऐसे लोगों का जो सुख है, आनंद है, उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। ठीक है, तो गोविंद नाम के भी बहुत सारे, कैसे भगवान इंद्रियों को भी आनंद देते हैं। अर्जुन जो है गोविंद, इसलिए किम न गोविंद राज्य न, हे गोविंद मैं इस राज्य का क्या करूं, क्योंकि राज्य आपका है, मैं अपनी इंद्रियों समेत आपको शरणागत हूं, कहने का मतलब है राज्य सब, क्योंकि इंद्रियों को आनंद देते हैं। जो ही हम कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने लगते हैं, हमारा अपने आप आनंद हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। और निरानंद कहां से शुरू होता है, जहां पर हम थोड़ा सा भी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो फिर वहां पर गोविंद नहीं होता है, समझ रहे हैं, फिर आप भोक्ता वाला भाव रहता है। तो इसलिए ये सभी नाम जो है मेरी हर तरह से रक्षा करें। ठीक है प्रभु, धन्यवाद, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हैं, हां बृहस्पति जी क्योंकि देवताओं के गुरु हैं तो पूजनीय व्यक्ति हैं। जी हां, नारद जी उनके पास गए। जी हां, नहीं तो क्योंकि गुरु को अधिकार है ना, गुरु ने देखा कि शिष्य के पास में शक्ति है और वो राजा भी है नहीं, तो उसने जानबूझकर अपराध किया, मत्त में चूर होकर के, समझ रहे नहीं, तो इसलिए उसको थोड़ा सा शिक्षा भी देना चाहते हैं। तुरंत इतनी जल्दी क्षमा करने से भी कभी कभी क्या होता है, इंसान जो है फिर गलती का रास्ता अपनाता है, इसलिए वो दर्शन ही नहीं दिए, दूर चले गए कहीं। वो क्षमा मांगने के लिए गया था लेकिन जो है वो दूर चले गए, फिर उनको ब्रह्मा जी के पास गए, फिर ब्रह्मा जी ने रास्ता बताया उनको ये, और रक्षा हुई इंद्र की फिर भी जैसे तैसे, नारायण कवच बोला उनने, इतने सारे प्रकार से यज्ञ किया, लेकिन फिर भी गलती कर रहे। देखिए चलो असुरों को भी, अगर असुरों को भी दे दिया अगर विश्वरूप जी ने, है तो ब्राह्मण ही ना, फिर वहां गलती किए, देखे इंद्र फिर गलती कर रहे हैं। इसीलिए स्वर्ग में बता रखा है कुछ देवताओं को छोड़ के बाकी देवता भी शुद्ध भक्त नहीं है, वहां पर भी सकाम जिन लोगों की इच्छाएं रह जाती हैं वो लोग देवता बनते हैं। जो यहां पर नाम जप कर रहे हैं लेकिन पद पोजिशन की बड़ी इच्छा है, मैं प्रेसिडेंट बनूं, मैं ये बनूं, मैं जीवीसी बनूं, मैं वो बनूं, तो भगवान फिर उनको अवसर देते हैं, बेटा आप बनो फिर, अब ये पद पोजिशन लो। और पद पोजिशन में जो है फिर व्यक्ति को शुद्धता लाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है कि नहीं? बड़े कम लोग जो है बच करके निकल पाते हैं सही में, नहीं तो इंद्र बार बार गलतियां करते हैं, इंद्र बार बार, ठीक है। और कुछ? धन्यवाद जी प्रभु जी। इंद्र ने अपने पाप का भाग जल, वृक्ष, स्त्री तथा पृथ्वी को क्यों दिया? क्योंकि ब्राह्मण हत्या का उनको वो लगा था ना, विश्वरूप जी को मारने का, तो ब्रह्म ब्राह्मण को हत्या करने का पाप से इंद्र को जो है रक्त वमन होने लगा। क्योंकि जब भी इस प्रकार से हम गलत कार्य करते हैं, यहां तक बता रखा ब्राह्मण हत्या से इस, क्या होता है, टीबी का रोग भी लगता है, क्षय रोग भी लगता है। कुछ बोलना चाहते हैं? तो इस प्रकार से ब्राह्मण हत्या की वजह से जो है ये इंद्र को जो है बहुत प्रकार के कष्ट सहने पड़े। तो उसने चार लोगों को, इन चार लोगों को जो है अपना उसका शेयर देना चाहा, क्योंकि उनने उपाय, उनने पूछा उपाय, क्या उपाय है जिससे मैं इससे बच सकूं, इस पाप से। तो उन्हें बोला आप अगर कोई ले लें इसको, आपके इस पाप के भाग को, तो तब तुम बच सकते हो। तो फिर चार लोगों के पास गए इस प्रकार से, हो ये बात है, आया ना समझ में? आया प्रभु जी कोई बात है और बोल सकते हैं? उन्होंने यह पाप क्यों स्वीकार किया? तो पाप स्वीकार नहीं किया, पाप तो लग ही जाएगा ब्रह्म हत्या के बाद में, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या कर दी, पाप स्वीकार नहीं किया, उनको लग गया पाप। उन्होंने इससे निर्वाण करने का क्यों कोई उपाय नहीं किया? क्योंकि उपाय किया ना तभी तो चार लोगों को दिया, शीघ्र वो गए अपने वरिष्ठ उन लोगों से पूछा कैसे इससे मैं अब हो गया है, तो तभी उन्होंने बोला कि अपना तुम शेयर दो इनको, जिन जिन जो जो लेना चाहते हैं। तो फिर इंद्र ने जो है चार लोगों से प्रार्थना की, तो चारों ने चतुर्थ अंश लिया, 25-25%, फिर जो है पाप से मुक्त हुए, ठीक है। जो भी हो स्वर्ग की विधि इतनी उत्तम विधि नहीं है, हमें जो है वैष्णव विधि में रहना है, यह हरे कृष्ण महामंत्र का कवच रखना है अपने जीवन में, ठीक है। स्वर्ग लोक में भी लड़ाइयां चलती रहती हैं, तो हमारे लिए स्वर्ग लोक कोई आदर्श नहीं है, हमारे लिए भगवान का धाम ही आदर्श है, और जो गौड़ीय वैष्णवों की भक्ति है वही आदर्श है, ठीक है। हरे कृष्ण, जय ग्रंथराज श्री श्रीमद्भागवतम की, जगद्गुरु शील प्रभुपाद की, समवेद भक्त वृंद की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्री श्री राधिका रमन कृष्ण बलराम, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे।